जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गोचार अष्टोदर श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोदर श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 5 श्री भगवान उवाच अहो अमी देववर अमर अर्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फल अर्हणं नमन्ति उपादाय शिखाभिर् आत्मनः तमः अपहत्यै तरुजन्म यत् कृतम्। श्री भगवान उवाच अहो अमी देववरामरार्चितम् पादाम्बुजं ते सुमन फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम् अहो अमी देववरामरार्चितम् पादाम्बुजं ते सुमनफलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम् अहो अमी देववरामरार्चितम् पादाम्बुजं ते सुमनफलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्
Matalis. श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहो ओ अमी ये देववर देवताओं में श्रेष्ठ श्री बलराम अमर अमर देवताओं द्वारा अर्चितम पूजित पाद अंबुजम चरण कमलों पर ते आपके सुमनह फूल फल तथा फल की अर्हणम भेंट नमन्ति वे नमन कर रहे हैं उपादाय प्रस्तुत करते हुए शिखा भी अपने शिरों से आत्मनः उनका अपना तमः अज्ञान का अंधकार अपहत्यई दूर करने के लिए तरु जन्म वृक्षों के रूप में उनका जन्म यत जिससे अज्ञान कृतम उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, देखो देखे ना, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सर सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। तात्पर्य, वृंदावन के वृक्ष यह सोच रहे थे कि पूर्व अपराधों के कारण ही उन्हें अब वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा है, और अचर होने के कारण वे कृष्ण द्वारा पूरे वृंदावन क्षेत्र में घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। दरअसल वृंदावन के वृक्ष, गौवें तथा सभी प्राणी महान आत्माएं थीं जिन्हें भगवान का सान्निध्य प्राप्त था, किंतु वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने को अज्ञानग्रस्त मानकर कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। भगवान कृष्ण उनके मनोभावों को समझकर उन पर स्नेह दृष्टि डालते हुए अपने बड़े भाई बलराम से उन सबकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम बलराम जी के कथा के विषय में आयोजित किया गया है, और इसमें आज हम अनेक अनेक इस्कॉन के मंदिरों का स्वागत करते हैं। इस्कॉन पंजाबी बाग, इस्कॉन उदयपुर, इस्कॉन नागपुर, इस्कॉन अमरावती, इस्कॉन सोलापुर, ऑल इंडिया पदयात्रा, हरे कृष्णा टीवी और हमारा इस्कॉन जीवी फेसबुक लाइव, सभी को प्रणाम जहाँ कहीं भी हो। तो ये बड़ा मार्मिक प्रसंग दशम स्कंद में, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं और अपने से अग्रज बलराम जी को सम्मानित करते हुए कहते हैं कि ये सारे वृक्ष आपकी सेवा पूजा के लिए आतुर हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से जानते थे कि ये सभी वृक्ष उनके आगमन को देखकर उनको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण बलराम जी को ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं। प्रभु कहे रामानंद बिनय रखोनी, आप नारक कथा पर मुंडे देन आनी। तो चैतन्य चरितामृत में जब महाप्रभु रामानंद राय के विषय में सुनते हैं तो कहते हैं, रामानंद राय ऐसे महानुभाव है जो उनकी कोई स्तुति करे, उनको कोई श्रेय दे, वो श्रेय दूसरों को प्रदान करते हैं। महानुभावेर स्वभाव, महानुभावेर सहज स्वभाव ऐ होए, आपना रग गुण नहीं आपने कहे। महानुभावों का ये सहज स्वभाव होता है कि अपने मुख से अपनी स्तुति वो नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरों को सम्मानित करेंगे। तो कृष्ण और बलराम के इस दिव्य परस्पर प्रेम और स्नेह में ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जब कृष्ण और बलराम वृंदावन के वनों का विचरण करते हुए चल रहे हैं। एते लीनस्तव यशोखिल लोकतीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं बने पिन जहत अनघात्मदेवम। तो यहां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को कह रहे हैं, एते अलिनस, ये जितने भ्रमर हैं ये वास्तव में सब महान ऋषिगण और महात्मा गण हैं। गायन्ति आदि पुरुषानुपतम भजन्ति, ये वास्तव में आपके चरणों का अनुगमन करते हुए आपको सम्मानित करने के लिए आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रायो अमि मुनिगणा भवदीय मुख्या, और इसलिए ये सभी ऋषि मुनिगण आपकी स्तुति करते हुए संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं। गूढ़म वने पिन जहत अनघात्म देवम, और हे बलराम जी, जो भी आपके गुणगान करेगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रसारण जहाँ होगा वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्तेन गदाव्रत, जहाँ भी भगवान और भगवान के भक्तगण निवास करें, उनके चरणों का स्पर्श हो, जहाँ उनके मुखारविंद से श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन हो, तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। गूढ़म वने अपि न जहती, आप भले गुप्त रूप से गोपनीय रूप से भ्रमण कर रहे हो, जगत के समक्ष साक्षात प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं हो, लेकिन आपके इस गुप्त रूप में भी ये सब समझ गए कि आप कौन हो। भले आप सामान्य ग्वाल बाल के रूप में आडंबर रचाने का भरपूर प्रयत्न करते हुए अपने असीम शक्तियों को पूरी तरह आवृत्त करना चाहते हो, लेकिन ये भ्रमर पहचान गए कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। गूढ़म बने पी न जहती, इसलिए आपको छोड़ नहीं रहे हैं, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अनगात्म, तो इसलिए कहते हैं आप अनग हो, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो, और आपके संग लाभ को ये छोड़ना नहीं चाहते। तो जैसे कल हमने चर्चा की, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष, तो कृष्ण और बलराम ने गूढ़ रूप से गुप्त रूप से अपने आप को सामान्य बालक की तरह लीला क्रीड़ा करने का प्रयत्न किया ब्रज में। तो तीर्थ शब्द का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तीर्थ शब्द का जो लिटरल अर्थ है वो है, इट इज अ मीन्स टू क्रॉसिंग मटीरियल एग्जिस्टेंस, अर्थात भौतिक जगत को पार करने के लिए एक सुगम उपाय या मार्ग, उसको कहते हैं तीर्थ, है कि नहीं। यस्याघ मर्षोद सरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्नाः, तो तीर्थ शब्द जहां पर भी प्रयोग होता है, अर्थात भव सागर के ऊपर नौका मानो, या भव सागर के ऊपर पुल मानो, या जो कोई भी हो, भव सागर को पार कर भगवत धाम में पहुंचने के लिए एक सुगम उपाय, सरल मार्ग, इसको कहते हैं तीर्थ। तो ऐसे कई प्रकार के तीर्थ हैं, है कि नहीं। छठे स्कंद भागवत में ये वर्णन आया है ऐशवश्रेया कि भगवान इस जगत में विविध प्रकार के उपाय प्रकट करते हैं, और इन उपायों में है हरिनाम, हरिकथा, धाम और वैष्णवों का संग, अर्च विग्रह इत्यादि, ये सभी तीर्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का पाठ और भगवान की कथाओं का श्रवण भी तीर्थ की श्रेणी में आता है, तो इसलिए यहाँ वर्णन आ रहा है। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ कर रहे थे, तब कविराज गोस्वामी कहते हैं, सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कोयला, सही छले सही देशे देश लोक निस्तारिला। तो महाप्रभु दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, ऐसा उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन महाप्रभु के चरण कमल जहां पड़े वही स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है। इसलिए सही सब तीर्थ स्पर्शी, उन सभी तीर्थ स्थानों को जब महाप्रभु स्पर्श किए और जब वहां उन सभी बड़े पावन नदियों में सरोवरों में स्नान किया, महातीर्थ कोयला, महाप्रभु ने वास्तव में अपने दिव्य स्पर्श से उन तीर्थों में सन्निहित जितने पाप संचित थे उन सभी को नष्ट कर दिया। सही छले सही देश लोक निस्तारिला, और इस प्रकार तीर्थ यात्रा का आडंबर रचाते हुए महाप्रभु ने वहां सभी जीवों का उद्धार किया। तो महाप्रभु का मूल कार्य केवल यही था कि जगत का उद्धार। तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि यशो अखिल लोक तीर्थम एते अलिनस्तव यशो। हे बलराम जी, आपका यशोगान करते हुए संपूर्ण जो वन के मार्ग में ये तीर्थ पैदा कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं गायंत कि ये जितने भ्रमर ऋषि मुनि का वेश धारण करके भ्रमण कर रहे हैं आपके साथ, वो अन्य सभी स्वार्थपूर्ण मार्ग का परित्याग कर केवल पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल और श्रवण और कीर्तन के माध्यम से पुण्यों का संचय कर रहे हैं। भले शास्त्रों में विविध प्रकार के पुण्यों के संचय के उपाय दिए गए हैं, अहो बत शुपचो गरियान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुषुष्ण नार्या। तप हुआ, जप हुआ, तीर्थ स्थानों की यात्रा हुई, दान दक्षिणा हुआ, वृक्षारोपण करना इत्यादि इत्यादि कई पुण्यों के संचय करने के मार्ग दिए गए हैं। लेकिन यतो भक्ति रधोक्षजे अहोयतु की अप्रतिहित यात्मा सुप्रसिद्ध, जो भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है उसकी विशेषता क्या होती, या नास्थाय नरो राजन न प्रमद्येत करहि धावन निमिल्यमानेत्र न पतेत न स्खलेत इह। वो इस भक्ति के मार्ग के पथ पर, स्पष्ट निर्मल पथ पर इतनी तीव्र गति से चलता हुआ अन्य किसी दूसरे पुण्यों के संचय का उपाय अपने मन में धारण नहीं करता। श्रृणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जो हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, जो कथाओं का हम श्रवण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, हरि कथाओं का और कीर्तन के माध्यम से हम अपने पुण्यों का संचय कर रहे हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन। और जब ये पुण्यों का संचय होगा तब इन पुण्यों के संचय के प्रभाव से फिर हमारे जीवन में उचित सकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों स्तर पर हो सकता है। हम लोग करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन भौतिक स्तर पर भी कई पापों के विनाश और पुण्यों के संचय से कई लाभ मिल जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में साक्षात उपाय नहीं है, इसके लिए भक्त प्रयास नहीं करते, लेकिन अनायास ये भी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मूलभूत कारण इन पुण्यों के संचय करने का, अनर्थों से मुक्त होकर हम अर्थ प्रवृत्ति करें, भगवत भक्ति में आगे अग्रसर होने का हम प्रयास करें। कृष्ण कथाय रुचि तोमार बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथाय रुचि सही भाग्यवान। तो महाप्रभु स्वयं वर्णन करते हैं, कृष्ण कथाय रुचि तुम्हार बड़ भाग्यवान। प्रद्युम्न मिश्र को कहते हैं आपके कृष्ण कथा में रुचि जागृत हुई, आप बड़े भाग्यशाली हो। और फिर कहते हैं जार कृष्ण कथाय रुचि, जिसकी कृष्ण कथा में रुचि जागृत हो गई सही भाग्यवान, वो वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए यहां पर वर्णन किया गया है, रियल साइलेंस मीन्स टू नॉट स्पीक नॉनसेंस, रियल साइलेंस मीन्स टू लिमिट वन्स वर्बल एक्टिविटीज टू दोज साउंड स्टेटमेंट्स and discussions relevant to the loving service of the Lord. मौन का वास्तविक तात्पर्य क्या है? केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति से संबंधित हम शब्द ध्वनि को अपने जीवन में उतारें। इसलिए तीर्थ और गायंत को दोनों जोड़ दिया गया है। यशो अखिल लोक तीर्थम गायंत। कृष्ण बलराम जी को कह रहे हैं, ये भ्रमर जो गुंजारव कर रहे हैं, जो ब्रज में मयूरों की केका आप सुन रहे हो, जो कोकिलों के कलरव इत्यादि, ये सभी केवल आपकी स्तुति में हैं। आपके गुणों का, आपके यशों का ये गुणगान कर रहे हैं, अन्य दूसरा कोई भी अभिप्राय नहीं। तो इसलिए ये कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और साधना, ता कृष्ण भावे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे। जब वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया, तब सारे जंजीर टूट गए, श्रृंखलाएं कट गईं और वो जेल खाना खुल गया, और जो असंभव था वसुदेव जी के लिए संभव हो सका। उसी प्रकार जब हम प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन नाम जप में अपना समय और ध्यान और चित्त को आविष्ट करें, तो भौतिकवादी जगत को लगता है कि ये लोग अपना सुबह 4 बजे से 8-9 बजे तक 5 घंटा यूं ही व्यर्थ गंवा दिए। इसका आउटपुट क्या निकला, इससे क्या कमाया, इनको मिला क्या? 4-5 घंटा निकाल दिया यूं ही बड़बड़ करते हुए। क्या तो सभी एक साथ बड़बड़ किए, या फिर एक माइक पे बड़बड़ किया बाकी सुने? जो भी था ये सब बड़बड़ ही तो था। तो इससे क्या मिला? तो इसलिए केवल जो भक्ति में है वो समझ सकते हैं कि ये पुण्यों का संचय हो रहा है, जो कि गाड़ी में डीजल भरने की तरह है। अगर गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी है और कभी कभी पेट्रोल भरने के लिए 0.5 किलोमीटर लाइन भी लगता है, कोई कहेगा अरे भगाओ गाड़ी भैया, कहां खड़े हो यहां पर, 1 घंटा तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, अब तक कहां तक पहुंच जाते, निकालो गाड़ी। वो कहेगा अरे भैया फ्यूल टैंक खत्म होने वाला है, भरेंगे नहीं तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी। बोले अरे छोड़ो यार निकलो। तो वो 1 घंटा जो प्रतीक्षा कर रहा है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक टैंक में वो तेल नहीं भरेगा वो इंजन चलेगा नहीं और गाड़ी बहुत दूर नहीं जाएगी। इसलिए आज तक इतिहास में कोई भी व्यक्ति बिना पर्याप्त मात्रा के श्रवण और कीर्तन किए बिना भगवत धाम में प्रवेश कर ही नहीं पाया है। केवल हाथ पैर चलाकर भगवत धाम के द्वार खुलते नहीं। इसलिए मन मना भव मत भक्तो, संपूर्ण गीता सुनाई गई है अर्जुन के मन को आविष्ट करने के लिए। हाँ, प्रयत्न हम भी करते हैं, प्रयास हम भी करते हैं, कठोर परिश्रम हम भी करते हैं, लेकिन कठोर परिश्रम कैसा, उस भागते हुए उछलते हुए मन को गले से पकड़कर एक जगह बिठाकर उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनके विषय में सेवा का भाव उत्पन्न कराना। तो इसलिए यहां पर ये वर्णन कर रहे हैं, तीर्थ लोक तीर्थम यशो अखिल लोक तीर्थम, कि ये भ्रमर, वास्तव में भ्रमर कृष्ण के चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, बलराम जी के आसपास भी थे, लेकिन कृष्ण कह रहे नहीं, आपके गुणों की स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी श्रवण और कीर्तन जब हो, नाम जप हो, कीर्तन हो, कोई कथा हो, उसको सामान्य नहीं मानना चाहिए। भले हम बैठ के सुन रहे हो, लेकिन वो हृदय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है और शनै शनै भगवान के प्रति हमारे चित्त को सकारात्मक करते हुए श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करा रहा है। एक बार हमारे एक भक्त की नौकरी चली गई थी, बहुत साल पहले की बात है, और वो दूसरा कोई नौकरी खोज रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको संतोषजनक कुछ मिला नहीं। ऑफर आ रहे थे लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दिन के बाद एक उसको अच्छा ऑफर मिला। लेकिन बहुत जगह रिजेक्ट होने के बाद बड़े मायूस हो गए थे, हतोत्साहित हो गए थे और मूड में नहीं थे। लेकिन उनको मिला इंटरव्यू का चांस अपियर होने का, तो वो बोले चलो जाते हैं। तो फिर इंटरव्यू के लिए उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, बोला जो भी होगा बाकी सभी इंटरव्यू जैसा ही होगा, कुछ कुछ पूछेंगे फिर रिजेक्ट करेंगे। तो 3 घंटे का उनका ड्राइव था, तो 3 घंटे के ड्राइव में उन्होंने राधानाथ महाराज का लेक्चर चला दिया और महाप्रभु और प्रताप रुद्र महाराज की लीला वो सुनने लगे। तो 3 घंटे के ड्राइव में पूरा लेक्चर सुना और बोले नौकरी मिले न मिले कम से कम बढ़िया लेक्चर तो सुना। इंटरव्यू के सारे कैंडिडेट्स में सबसे लास्ट थे वो, और इंटरव्यू बोर्ड भी थक गया था, ये भी लास्ट में थे। इनके मन में भी कोई विचार या विशेष उत्साह नहीं था, बोले जो होगा देखा जाएगा। अंदर गए तो सबसे पहला प्रश्न इनको पूछा गया कि देखिए आपको कंपनी का कंट्री हेड बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा लीडरशिप पोजीशन है, लीडरशिप में सबसे प्रमुख गुण क्या है? तो तुरंत बोले तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। इंटरव्यू बोर्ड झटका खाया, बोले अरे कौन सी भाषा बोल रहे हो? फिर बोला मैं समझाता हूँ, और फिर ह्यूमिलिटी के ऊपर उनको पूरा जो है 5-7 मिनट सुना दिया। तो इंटरव्यू बोर्ड वाले बोले यार ये क्या है, ये कहाँ से तुमने निकाला? तो फिर वो प्रताप रुद्र महाराज राजा थे और कैसे उनको नम्र किया, पूरी कथा सुनाना आरंभ किया, और इंटरव्यू बोर्ड भी बोर हो गया था तो कथा में मजा आ गया उनको, थोड़ा लगा ये भी हटके है कैंडिडेट। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बोल रहे थे क्योंकि मन में कोई आशा नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। वो सोच लिए नौकरी गया भाड़ में, ये सभी लोगों को कथा सुना के ही छोड़ूंगा। तो उनका ध्यान केवल उन सभी को प्रचार करने पर था, तो पूरा तल्लीन होकर प्रचार किए, और वो तल्लीन होकर प्रचार कर रहे थे और इंटरव्यू बोर्ड देख रहा था क्या कॉन्फिडेंस है, क्या लीडरशिप है, क्या वैल्यू बेस्ड व्यक्ति है। तो फिर वो वहां से निकल गए और उसके बारे में सोचे भी नहीं, संतुष्ट हो गए, चलो आज अच्छा प्रचार हुआ। 1 महीने के बाद उनको उस कंपनी का ऑफर लेटर मिला, बोले 100-200 कैंडिडेट में केवल उनको सेलेक्ट किया। तो बोले यार लेक्चर्स में मेरी श्रद्धा बढ़ गई। तो वैसे ही हमारे मंदिर में बहुत साल पहले जब पुष्याभिषेक चल रहा था, हमारे एक मित्र आए थे, वो अपने एक कोलिक को लेके आए थे पहली बार, अच्छे जो है श्री वैष्णव फैमिली के थे वो, फर्स्ट टाइम इस्कॉन टेम्पल आ रहे थे। और पुष्याभिषेक का दिन था, सुबह सब लोग फूल का वो निकालते रहते हैं कली, तो 1 टन फूल के सारे कलियाँ निकाल रहे थे। तो वो देख के सबसे पहले ये श्री वैष्णव बेचारे झटका खाए, यार हम तो माला बनाते हुए देखे हैं, ये इतना फूल के पंखुड़ी निकालते हुए कभी देखे नहीं, ये क्या चल रहा है? तो बोले शाम को उत्सव है पुष्याभिषेक। बोले इस ये क्या है? बोले आप देखो। तो शाम को फिर मैं उनको सामने बिठाया एक सुरक्षित कोने में, क्योंकि पुष्याभिषेक के दिन चौपाटी में जो है कौन सा कोना ढूंढो बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो पुष्याभिषेक का पुष्याभिषेक हो जाता है। तो वो बैठ गए, वो मैंने कहा हिलना मत यहाँ से, देखते रहना और फिर जब सही समय आएगा तो फिर मैं आपको लेके चलूँगा। तो फिर वो बैठे, पूरा अभिषेक देखा, अच्छा लगा। फिर सारे फूल बाहर आए
और बाहर आने के बाद अचानक जो आक्रमण होने लगा वो भी झटका खाए, बोले ये क्या हो गया मंदिर को, और एक दूसरे के ऊपर लोग जो है फूल बरसा रहे थे, सब कर रहे थे, ये आंखें इनकी बड़ी बड़ी होकर देखने लगे, तभी अचानक एक फूल का इतना बड़ा गुच्छा सीधा उनको आके लगा, उनका चश्मा गिर गया। और फिर मैं देख ही रहा था वो करेंगे क्या, वो चश्मा उठाए लगे, यहां वहां देखा कोई देख रहा है क्या, कोई नहीं देखा, खुद हुए उठा के खुद मारने लगे। वो भी उस दिन के रंग में रंग गए। तो मैंने कहा चलो लगता है आज के इस प्रोग्राम में वो भी आविष्ट हो गए, पूरी तरह डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगले दिन सुबह उनका फ्लाइट था तो उनको मैं छोड़ने जा रहा था, तो चौपाटी मंदिर के आगे के कोर्टयार्ड में हाथ में बीड बैग लेके वो आगे पीछे नाम जप कर रहे थे। मैं झटका खाया, मैंने कहा अरे मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं इसके बारे में कि जप करो, ये करो वो करो, आप ये क्या हो गया। वो बोले कल के रात के फेस्टिवल से मुझे ऐसा झटका लगा कि हाथ में माला आ गया। तो मैं सोचता हूं कि अब ये नाम मुझे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुभव मैंने कभी पहले अपने लाइफ में कभी देखा नहीं। तो नाम जप उन्होंने आरंभ किया, फिर घर पे जाके उन्होंने अपनी पत्नी को भी नाम जप में लगाया, अभी दोनों 16 माला करते हैं। और सिएटल इस्कॉन मंदिर में जितना प्रसाद कुकिंग है पूरा किचन के वो इंचार्ज बन गए। अभी हमारे दोस्त हैं, थोड़ा तो असर पड़ेगा। तो पूरा उत्तरदायित्व तो उन्होंने संभाल लिया वहां पे। तो सारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं एवरी डे वहां पर वो लोग प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग याद करते हैं कि एक जो परिवेश था मंदिर का और उसमें जो कीर्तन चल रहा था और वो कीर्तन का प्रभाव ऐसा कि अभूतपूर्व। तो इसलिए यहां पर श्री कृष्ण बलराम जी की कई कई श्लोकों में स्तुति करते हैं। और आगे ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का जिसमें आया है धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुढ़स्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकै गोप्योंतरेण भुजयोरपि यत्स्पृहाश्री। कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं धन्येयम अद्य धरणी तव वीरुढ़स्य। आज धरणी या पृथ्वी देवी बड़ी सौभाग्यशालिनी हो गई, क्यों? आपके चरण कमल का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ। तृण वीरुढ़स्त्वत्, क्योंकि आपने अपने चरणों से जितने घास थे उनको स्पर्श किया, जितने छोटे छोटे झाड़ इत्यादि को स्पर्श किया। पादस्पृशो द्रुमलता करजा भिमृष्टा, और इस ब्रज के वन में चलते चलते आपने करजा अपने हस्त कमल से अभिमृष्टा स्पर्श किया, किसको? द्रुम वृक्षों को और लताओं को। नद्योद्रय खग मृगा सदयावलोकई, और आपने अपने दृष्टिपात से अपने नेत्रों से नदियों को, अद्रय पर्वतों को, खग मृगाह पक्षियों को और पशुओं को पूरी तरह शुद्ध कर दिया। गोप्योंतरेण भुजयोर अपि यत् स्पृहाश्री, और गोपियों को पावन किया अपने आलिंगन से। और सबसे अधिक सौभाग्य गोपियों का रहा, क्योंकि उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो श्री या लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार लक्ष्मी देवी निरंतर तपस्या कर रही हैं श्री कृष्ण के कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो यहां वर्णन यही आया है, अद्य का अर्थ है
कृष्ण और बलराम जिस समय उस धरती पर थे तो कह रहे हैं कृष्ण वराहदेव के रूप में पृथ्वी का उद्धार किए, कृष्ण शेष के रूप में संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए, तो ये वराहदेव और शेष ये दोनों ही बलराम जी के विस्तारित रूप हैं। कृष्ण सही सत्य कोरे जय मागे भृत्य भृत्य वांछा पूर्ति न हो आर अन्य कृत्य। तो भगवान श्री कृष्ण निरंतर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य, भगवान का अन्य दूसरा कोई कार्य ही नहीं, वो निरंतर भक्तों की इच्छा के अनुसार उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। करजाब मृष्टा अर्थात आपके हस्त कमल से ये सभी शुद्ध हो गए, पावन हो गए, इनकी अभीष्ट सिद्धि हुई। हरि बोल बोली प्रभु करे उच्च ध्वनि वृक्षलता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। तो हरिनाम संकीर्तन से जब महाप्रभु झारखंड वन के भीतर से चल रहे थे तो उनके उच्च हरिनाम संकीर्तन के परिणाम से वृक्ष लता प्रफुल्लित, वृक्ष और लताएं प्रफुल्लित हुई, प्रसन्न हुई उस ध्वनि को सुनकर। झारखंड स्थावर जंगम आछे जत कृष्ण नाम दिया कोयला प्रेमे ते उन्मत। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस कृष्ण नाम के माध्यम से सभी वृक्षों को पावन किया और जो एक दृष्टिकोण से चर्म चक्षुओं से देखा जाए तो लगता है कि सारे वृक्ष प्रतिध्वनि कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रतिध्वनि नहीं, वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। इसलिए कृष्ण नाम दिया कोयला प्रेमे ते उन्मत्त। तो इस प्रकार श्री बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वंदित पूजित और उनकी स्तुति होते हुए वो ब्रज के इन सभी वनों से भ्रमण करते हुए चल रहे थे। कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ इस प्रकार लीला क्रीड़ा प्रसारण कर रहे थे मानो कोई सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य ग्वाल बाल हो जो गायों के साथ विचरण कर रहे हो। तो जब गायें विचरण करती थीं गोचारण के समय, उस समय कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कभी कोयलों की भांति ध्वनि करते, कभी मयूरों की तरह नृत्य करने लगते, कभी उच्च स्वर में वो अपने गायों को पुकारते और भ्रमर और पक्षी जिस प्रकार उड़ते उस प्रकार उनकी नकल करते हुए उड़ने का प्रयास करते हैं। और कैसे छोटे छोटे जो कम शक्ति वाले शक्तिहीन पशु बड़े गजराज या सिंह इत्यादि के भय से यहां वहां तितर बितर होकर भाग जाते, वैसे कभी कभी कृष्ण बलराम भी तथाकथित भय को प्रकट करते हुए यहां वहां भागते। अर्थात उनके इन मनोहर लीलाओं को देखकर किसी का भी चित्त आकृष्ट हो जाता। फिर उस वन में गोचारण करते हुए बलराम जी कभी थक कर वृक्ष के नीचे वृक्ष के छाव में विश्राम करने लगते, तब श्री कृष्ण बलराम जी के चरण कमलों को अपने हस्त कमल में लेकर पाद संवाहन करने लगते। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहनादि भी। तो पाद संवाहन इत्यादि करते स्वयं विश्रमयति, कैसे बलराम जी का थकान दूर हो। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोप उत्संगम उपबर्हणम, फिर कृष्ण किसी ग्वाल बाल को आदेश करते कि आप इनको कुछ जो मयूर पंख के जो पंखे थे उसे झलिए और फिर बलराम जी के चारों तरफ आप यहाँ खड़े होकर
कुछ कपड़े से उनको शीतलता प्रदान कीजिए और कृष्ण स्वयं बलराम जी के चरण कमलों को अपने हस्त कमलों में धारण कर उसका संवाहन करने लगते थे। इस प्रकार कृष्ण बलराम जी की पूर्ण सेवा में लगे हुए थे। कल हमने धेनु का वध वर्णन किया और आज 18वें अध्याय में प्रलंब वध का हम वर्णन करेंगे। अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर् मुदितात्मभिर् अनुगीयमानो अन्यविशत् ब्रजं गोकुलमंडितम्। अब वर्णन आ रहा है 18वें अध्याय में। अतः कृष्ण परिवृतो, घिरे हुए ज्ञातिभिर, अपने ग्वाल बाल मित्रों के द्वारा घिरे हुए, मुदितात्मभिर, बड़े आनंद के साथ वो प्रवेश करते वन में। ब्रजम गोकुल मंडितम, उस ब्रज गोकुल में प्रविष्ट होते। अनुगीय मानो, और कृष्ण और बलराम जब प्रविष्ट होते तो उनके चारों तरफ ग्वाल बाल मित्र उनकी स्तुतियां करते हुए उनके स्तुति में अनेक गीत गाते थे। और तब यहां जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि कालिया के दमन के पश्चात दावाग्नि पान होने के बाद अब 18वें अध्याय में कृष्ण अपने सभी गायों को लेकर वन में प्रविष्ट हुए हैं। अथ शब्द का यही अर्थ है कि अगले दिन प्रातःकालीन। तो परिव्रतो शब्द का अर्थ है कि अपने प्रेमी भक्तों और प्रेमी ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए, परि। तो इसलिए नारायण की तुलना में कृष्ण के चार अधिक गुण क्या हैं? लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टय। लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो हो, तो वेणु रूप और सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा निरंतर घिरे हुए ब्रज में कृष्ण रमण करते हैं। तो इसलिए यहां वर्णन आया है कृष्ण बीचों बीच और चारों तरफ उनके ग्वाल बाल मित्र उनकी सेवा में और उनका कीर्तन करते हुए और सभी गायों से घिरे हुए। तो ये है वृंदावन के वन प्रवेश का दर्शन। वृंदावन के वन में प्रविष्ट करते समय कृष्ण के साथ बलराम जी होते हैं, ग्वाल बाल मित्र होते हैं, गायें होती हैं और ये सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम की स्तुति करते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार गायें, यहां एक बड़ा अच्छा जीव गोस्वामी पाद टीका देते हैं कि गायें अब कालिया दमन की लीला और उसके पश्चात दावानल के कारण कुछ भ्रमित सी हो गई थी और उनका नियमित दिनचर्या कुछ भंग हो गया था। तो इसलिए प्रातःकालीन वो तुरंत अपने उचित समय पर गोचारण के लिए जाना चाह रही थी और इसलिए कृष्ण उनको लेकर चल रहे थे। तो यहां पर तात्पर्य में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि पिछले एक दो दिन में उनका स्केड्यूल बिगड़ गया था। हाँ, कृष्ण को तो बड़ा आनंद आया कालिया के ऊपर नृत्य करने में, क्योंकि कालिया के ऊपर नृत्य करते करते प्रथम बार संपूर्ण ब्रज में अब रासलीला की तैयारी के अभी से वो जो है प्लानिंग योजना कालिया के लीला के माध्यम से आरंभ हुआ, क्योंकि अभी तक कृष्ण और गोपियां एक दूसरे के आमने सामने कभी आई नहीं। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि ऐसी लीला रचाऊं जिससे कालिया के हजारों फंड स्टेज बने और उस स्टेज के ऊपर मुझे भी अपने नृत्य प्रदर्शन करने का, कला प्रदर्शन करने का कुछ अवसर मिले, और जब जबरदस्त नृत्य करूंगा और ऊपर से देवतागण गीत गाएंगे और हर प्रकार से थिरकते थिरकते कालिया के हजारों फंड से सारा विष निकलेगा, जो वयोवृद्ध गोप और गोपियां हैं उनको लगेगा कि कालिया को दमन कर रहा है, लेकिन जो तरुणी गोपियां हैं वो समझ जाएंगी क्या इंप्रेसिव डांसर है। तो इसलिए अपना भी गोपियों के मार्केट में भाव बढ़ेगा, ऐसा सोचकर जब कालिया के सर पर वो तैयार हो गए थे और सारे ग्वाल बाल आ गए थे, कई गोपियां भी आ गई थी, सारे गाय पशु इत्यादि वहां पे थे, लेकिन कृष्ण अभी भी नृत्य आरंभ नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हीरोइन नहीं आई थी, राधा रानी। और जब बहुत समय के बाद जब राधा रानी आकर अपना स्थान लेती है, फिर कृष्ण अपना कमरबंद को कुछ टाइट करते हैं और फिर कहते हैं बेटा कालिया तैयार हो जा, और फिर कृष्ण उसके ऊपर नृत्य करना आरंभ करते हैं। ऐसा नृत्य जो इस जगत का बड़े से बड़ा डांसर जो है कभी विचार भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना घूमता हुआ डायनामिक स्टेज, कालिया का सर एक के ऊपर एक, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, और सर्प की त्वचा बड़ी मुलायम और चिकना होता है, तो उसके ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे थे। तो कृष्ण को तो बड़ा आनंद आया, लेकिन बेचारी गायें वो परेशान थी कि उनका नृत्य से जो है ठीक है कृष्ण कर रहे थे ठीक है, लेकिन उनके गोचारण का जो समय था वो उचित नहीं था। अगले दिन गोचारण के लिए प्रयास किए, दावाग्नि आ गई उसी रात्रि को, तो फिर अगले दिन वो सभी डिस्टर्ब थे गायें। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं काउज लाइक रेगुलरिटी, जो गाय हैं उनको अपने स्केड्यूल में ऊपर नीचे पसंद नहीं आता, सही समय पर उनको जो चाहिए वो चाहिए, तो इसलिए गायें तुरंत निकल पड़ी। और एक और बात लिखते हैं कि गायें भी अन्य ब्रजवासियों की भांति, उनके अंदर विशेष गुण क्या था, वो ब्रज को छोड़ नहीं सकते थे, चाहे ब्रज में कितनी भी समस्या आपत्ति कुछ आ जाए, लेकिन ब्रज अर्थात वो जहां पर कृष्ण के साथ संबंध इतना घनिष्ठ हो कि उस संबंध का आस्वादन करने के लिए व्यक्ति अपने सर पर कितना ही वज्रपात लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम उसे वो छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर वही वर्णन आया है, विदग्ध मृदु सतगुण सुशील स्निग्ध करुण तुमि तोमार नाही दोषाभास तब ये तोमार मन नहीं स्मरे ब्रजजन से आमार दुर्दैव बिलास। तो रथ यात्रा में महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं कि अरे गायें तक ब्रज को छोड़ नहीं पाती, आप कैसे ब्रज को छोड़ के चले गए। फिर राधा रानी सोचती है कृष्ण को दोषारोपण करे क्या, क्या ये कृष्ण का दोष है? तो कहती है नहीं, आप तो विदग्ध हो, बड़े एक्सपर्ट हो डीलिंग्स में, मृदु बड़े सॉफ्ट हो, कोमल हो, सत्गुण सर्वगुण संपन्न हो, सुशील हो, वेल बिहेव्ड हो, आपके जैसा व्यवहार ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, स्निग्ध आप स्नेह से अभिभूत हो, अनुराग के मूर्तिमान स्वरूप हो, करुण आप करुणा वरुणालय हो, तुमी तोमार नाही दोषाभास, ये सब आप हो क्यों, शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। ये सब वर्णन कहां आया है, शास्त्र में, शास्त्र में ये सब बात वर्णित है। तो अगर राधा रानी बोले कि आप कठोर हृदय हो, आप क्रूर हो, आप हमको छोड़ के चले गए, ये शास्त्र के विरोध में वक्तव्य हो जाएगा। तुमी तोमार नाही दोषाभास, आपका दोष नहीं है, तब ये तुम्हार मन नहीं स्मरे ब्रजजन, फिर भी आपके मन में ब्रजवासियों के विषय में विचार उत्पन्न नहीं हुआ, आपने हमको स्मरण नहीं किया। से अमार दुर्दैव बिलास, ये तो हम लोगों के पूर्व कर्मों का परिणाम था, दुर्दैव था, आपका थोड़ी दोष हो सकता, क्योंकि आप तो करुणा की मूर्ति हो, आप कैसे हमारे साथ क्रूर व्यवहार कर सकते हो। तो इस प्रकार ब्रज का कोई भी व्यक्ति ब्रज को छोड़कर नहीं जा पाता, गायें भी इतने आपातकालीन परिस्थिति को देखकर नहीं छोड़ सकी, इसलिए कृष्ण और बलराम उन सभी ग्वाल बालों को लेकर उनको वन में फिर प्रवेश किए। ब्रजे विक्रीडितोरेवम् गोपाल छद्म मायया, ग्रीष्मो नाम ऋतुर अभवन नाति प्रेयान शरीरिनान। अब वर्णन आ रहा है ब्रजे विक्रीडितोर एवं, ब्रज में कृष्ण और बलराम क्रीड़ा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के सेना नायक कृष्ण और बलराम, लेकिन विक्रीडितोर अब क्रीड़ा कर रहे हैं गोपाल छद्म मायया, अपने योग माया से आवृत गोपाल छद्म आवृत हैं, गोपाल रूप धारण करके भ्रमण कर रहे हैं एज ऑर्डिनरी काउहर्ड बॉयज। और जब ऐसे लीला कर रहे हैं तब क्या हुआ, ग्रीष्मो नाम ऋतुर, ग्रीष्म ऋतु वहां पर प्रकट हुआ, अभवन नाति प्रेयान शरीरिणाम, ये ग्रीष्म ऋतु शरीरधारियों को देहधारियों को इतना आकर्षक नहीं है, गर्मी का सीजन लोग इतना पसंद नहीं करते और अधिकांश लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं घूमने के लिए गर्मी के मौसम में। तो यहां वर्णन आया है कि गोचारण तो केवल कृष्ण और बलराम के लिए एक उनके लिए एक अवसर था वन में जाकर विविध प्रकार के क्रीड़ा खेलने का, और छद्म माया अर्थात भौतिकवादी लोगों के बुद्धि और मन को वो आवृत कर रहे थे, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि देखो हम तो केवल सामान्य गोपाल हैं, ग्वाले हैं, और दुर्योधन शिशुपाल इत्यादि जैसे कई असुरगण कृष्ण को इसलिए कभी सीरियस लिए ही नहीं, द्वारका के वो द्वारकाधीश बनने के बाद भी वो उसको गोपाल ही बुलाते थे, अरे गाय चराने वाला। तो गोपाल छद्म मायया, तो ये कृष्ण की तरकीब थी, कृष्ण का उपाय था कि केवल जो उनके स्नेहिल भक्त हैं वो हर परिस्थिति में समझ पाए कि वो कौन है। दे प्लेड चीटिंग दोज हु स्पीक विथ डिसेप्शन अबाउट काउ हर्डिंग, जिनको लगता है क्या है गायों के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति, ये कोई बहुत शक्तिशाली या प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकते। तो इसलिए कृष्ण की महत्ता को भगवत्ता को भौतिकवादी लोग इसलिए पहचान नहीं पाएंगे। तो यूज्ड काउ हर्डिंग एज एन एक्सक्यूज फॉर प्लेइंग एंड चीटिंग द मटेरियलिस्ट्स, तो इसलिए गोपाल बनकर कृष्ण घूम रहे थे। घोरे कृष्ण भजी मोर कोर आशीर्वादे, नीलाचल ऑसिजिन तुमार प्रसादे। तो महाप्रभु सन्यासी के रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप के आशीर्वाद से मैं पुनः जगन्नाथपुरी लौट सकूं। तो प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं कि सन्यासी गृहस्थ से आशीर्वाद स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं क्यों? क्योंकि महाप्रभु वर्णन करना चाहते हैं कि हां जो वर्णाश्रम के अनुसार जो कोई भी नियम हो, लेकिन जो शुद्ध भक्ति के नियमों को अपने जीवन में उतार कर राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय की सेवा पूजा अपने घर में करे, और घर में भगवान को केंद्र बनाकर जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करे, परात्म निष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाएं होए संसार तारण, समाज के लिए लगेगा कि ये तो गृहस्थ है, और हो सकता है समाज उनको इतना सम्मान की दृष्टि से न देख पाए और लगे कि जो सन्यासी है वो अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन महाप्रभु कह रहे, अरे मैं ऐसे गृहस्थों का आशीर्वाद स्वीकार करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाया है। इसलिए वैराग्य की एक ही परिभाषा है, कृष्ण की मैं सेवा कैसे करूं और कृष्ण को संतुष्ट कैसे करूं, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। यूयम लोके बत भूरि भागा लोकम पुनानाम मुनयो वियंती येषाम गृहाणाम वसतेति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। प्रहलाद महाराज के समक्ष जब नरसिंहदेव प्रकट हुए एक वैशिष्ट अवतार के रूप में, उसको देखकर युधिष्ठिर महाराज के मन में विचार आया, ओह कितना सौभाग्य है इनका, हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। तो नारद मुनि उनको सांत्वना देते हुए, उनको प्रोत्साहन कराते हुए कहते हैं, नहीं हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े वैरागी तपस्वी ऋषि मुनिगण जो वन में हर प्रकार का तपस्वी जीवन जीते हैं, उनके साथ इतना समय नहीं बिताया जितना आपके संगमरमर के महल में आकर आप सभी पांडवों के साथ समय बिताया है। यूयम लोके बत भूरि भागा, आपका सौभाग्य बड़े बड़े वैराग्यों से अधिक है। लोकम पुनानाम मुनयो वियंती, भगवान श्री कृष्ण गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, श्री कृष्ण सामान्य मानव के रूप में इस जगत में लीला क्रीड़ा करते हुए आप पांडवों के साथ अधिक समय बिताए, क्योंकि आप पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वाभाविक अनुराग से जीत लिया था। श्री कृष्ण की हर प्रकार से आप सेवा करने के लिए तैयार थे। स्निग्धेशु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु। तो भगवान को संतुष्ट करना हो तो एक ही उपाय है, उनके इच्छा के अनुकूल अनुरूप अगर हम सेवा करने के लिए तैयार हो तो चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, भगवान हमसे संतुष्ट होते हैं। भक्ति प्रेम तत्व कहे राय कोरी भक्ता आपनी प्रद्युम्न मिश्र कहे होए श्रोता। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्रोता बने, प्रद्युम्न मिश्र को वक्ता बनाए, प्रद्युम्न मिश्रा को भी श्रोता बनाए, रामानंद राय को वक्ता बनाकर, क्योंकि महाप्रभु ये दिखलाना चाहते थे कि बबिप्र किबन्यासी शूद्र के निनोए जय कृष्ण तत्व बेत सही गुरु होए। जो कृष्ण के तत्व को समझे वही गुरु है। इसलिए गोपाल छद्म मायया शब्द का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, कि ब्रजे विक्रीडितोर एवं गोपाल छद्म माया, एक सामान्य ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण और बलराम विचरण कर रहे थे, क्योंकि केवल ब्रज के भाव को रस को समझने वाले श्रद्धालु वैष्णव गण कृष्ण की और बलराम की महिमा को समझ सके, बाकी सभी जो भौतिक बुद्धि से अभिभूत हैं, जो इस जगत के पूर्व जन्म के कर्मों से जनित कलाओं को अधिक महत्व देते हैं, वो कृष्ण और बलराम के इस गोचारण लीला को देखकर प्रभावित नहीं हो सकते। वो इस जगत के किसी ऐश्वर्य प्रतिभा कला शक्ति सैन्य बल इत्यादि के प्रदर्शन से प्रभावित होने वाले भौतिक बुद्धि वाले लोग अपने चर्म चक्षुओं से कृष्ण और बलराम के इस माधुरी को पकड़ नहीं पाते। सच वृंदावन गुणैर वसंत इव लक्षितै यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव। तो अब वर्णन आया है वृंदावन के ग्रीष्म ऋतु का। तो आज अगर आप वृंदावन में जाओ गर्मी के मौसम में, तो
बड़ी गर्मी कड़ाके की धूप वहाँ पे होती है, लेकिन जो वास्तविक वृंदावन का अनुभव है, सच वृंदावन गुणैर, वो वृंदावन का गुण ऐसा है क्या, वसंत इव लक्षित, वसंत ऋतु के लक्षण ग्रीष्म ऋतु में प्रकट करता है। यत्रास्ते भगवान साक्षात, जब साक्षात भगवान विद्यमान थे, रामेण सह केशव, श्री राम अर्थात बलराम जी के साथ, वो केशव, बलराम जी के साथ जब केशव लीला कर रहे थे, वृंदावन का ग्रीष्म ऋतु वसंत ऋतु के लक्षण प्रदर्शित करने लगा। क्यों? ये कृष्ण के उपस्थिति की शक्ति है। दिस इज द पावर ऑफ द कृष्णा टच। कृष्ण जिसको स्पर्श करें वो अपना गुण बदल दे, ये मूलभूत तात्पर्य है। इफ कृष्णा टचेस द समर इट बिकम्स स्प्रिंग। कृष्ण ग्रीष्म ऋतु के संस्पर्श में आए वो वसंत बन जाता है। कृष्ण का नाम हमारे हृदय के अनर्थों का स्पर्श करें वो अनर्थ निवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात कृष्ण दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद घन आनंद घन ज्ञान घन स्वरूप और गुण वाले हैं, उनके संपर्क में जो आएगा, उनको जो स्पर्श करेगा, परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी जब कृष्ण के विभिन्न रूपों को देखते हैं कहते हैं उस समय सुखदेव गोस्वामी, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादया मित्राणि इव अजितावासा द्रुत रुत तर्षकादिकम्। वृंदावन वो स्थान है यत्र नैसर्ग, नैसर्गी रूप से संवैधानिक स्वरूप है ब्रज का, क्या दुर्वैराह, दो प्राणी एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं मोल सकते, संभव नहीं। शक्कर को आप कड़वा घोषित नहीं कर सकते, करेले को मीठा नहीं बना सकते, चाहे कितना भी उसमें शक्कर घोल डालो, लेकिन जब गले के नीचे उतरेगा तो अंत में वो कड़वापन मार के ही जाएगा अंदर, उसका गुण है, है कि नहीं। विषैले सर्प को कितना भी आप ट्रेनिंग करो, मारना मत मारना मत, किसी को डंक मत मारना, तो हूं करेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा तो सबसे पहले डंक मारेगा। तो इसको कहते हैं नैसर्ग स्वभाव, ओरिजिनल। तो यत्र नैसर्ग, तो वृंदावन में नैसर्ग गुण क्या है, दुर्वैराह, एक दूसरे के प्रति वैर है ही नहीं। सहासन नृ मृगादय, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। मित्राणि इव, एक दूसरे के साथ इस प्रकार रहते हैं जैसे वो एक दूसरे के मित्र हो। अजिता वासा, भगवान श्री अजित के चारों तरफ जो रहते हैं, जब अजीत बीच में हो, हम एक दूसरे के प्रति घृणा के ऊपर जीत जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना हो, क्रोध की भावना हो, वैर की भावना हो, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें सक्षम बनाए वो है अजीत। मित्राणि इव अजिता वासा द्रुत रुत तर्षकादिकम्। न केवल हम वैर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, हम क्षुधा प्यास विभिन्न प्रकार के शारीरिक मांगों के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मित्राणि इव अजिता वासा द्रुत रुक तर्षकादिकम्, ये है ब्रज का वास्तविक स्वरूप। इसलिए यहां पर वर्णन आया है,
तुमि तो ईश्वर साक्षात क्षम अपराध, जियाओ अमार गुरु करह प्रसाद। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में कुछ नास्तिकों को मिले, तो उनके जो गुरु के ऊपर जो थाली पूरा गिर गया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े, तो उनके शिष्य महाप्रभु से कहने लगे, उनको क्षमा करो, आप ईश्वर हो, इनके अपराध को क्षमा करो, इनको जियाओ अपनी शक्ति से। तब महाप्रभु उनको कहते हैं, प्रभु कहे सबे कह, कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु करने कहे सब कृष्ण राम हरि। तो सभी लोग मिलकर आप गुरु के करण में कृष्ण और नाम का नाम उच्च स्वर में बोलिए। तोमा सबार गुरु तबे पाइबे चेतन, सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन। तो सभी लोग मिलकर, वो सभी शिष्य मिलकर उच्च संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु करने कहे सबे कृष्ण कृष्ण हरि, चेतना पाया आचार्य बोले हरि हरि। तो जब गुरु के कान में जाकर सभी शिष्य लोग उच्च स्वर में कृष्ण 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 बोलने लगे, चेतना प्राप्त करके वो आचार्य उठे और बोले हरि हरि। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिष्य गुरु बने, तथाकथित वो शिष्य थे, लेकिन जिसको कृष्ण भक्ति का और हरिनाम संकीर्तन का ज्ञान पहले प्राप्त हो वो गुरु बनता है। और इसलिए उस हरिनाम संकीर्तन के उच्च जय घोष के परिणाम से, प्रभाव से, उनके हृदय में जो वैर की भावना थी वो सारा तत्क्षण नष्ट हो गया। ये हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव है, इसलिए विष्णु पुराण में वर्णन आया है। क्योंकि इस श्लोक में सच वृंदावन गुणैर वसंत इव लक्षित, यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव, राम के साथ कौन गए, केशव। तो केशव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है कृष्ण के लिए, रामेण सह, राम के साथ कौन थे, केशव। तो ग्रीष्म ऋतु वसंत जैसे हो गया, उसी प्रकार तस्मात् त्वयैष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन, तस्मात् त्वया एष दुष्टात्मा, विष्णु पुराण में यह श्लोक आता है, ये दुष्टात्मा केशी को दिखाते हुए, हाँ, हतः केशी जनार्दन, जनार्दन भगवान ने इस केशी का जिस दिन से दमन किया, हनन किया, नाश किया, तस्मात केशव नाम त्वम, उस दिन से कृष्ण का एक और नाम क्या पड़ गया, केशव। तस्मात केशव नामात्वम लोके गेयो भविष्यसि, इस जगत में आप केशव नाम से आपकी कीर्ति गाई जाएगी। तो केशी क्या था, एक महाभयंकर, बड़े ही अश्लील और फूहड़ असुर। तो सोचो, कोई भी व्यक्ति अपने नाम को किसी महाभयंकर बदनाम असुर के साथ जोड़ना चाहेगा क्या? लेकिन ये कृष्ण की अद्भुत कृपा है। तस्मात केशव नामात्वम लोके गेयो भविष्यसि, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, न केवल केशी का नाश करके उसे मुक्ति प्रदान की, लेकिन साथ साथ कृपावश आपने एक नाम भी उसके ऊपर ले धारण कर लिया, जिसके कारण केशी अमर हो गया। क्योंकि कृष्ण का यह नाम केशव अमर है कि नहीं? और वो केशी क्या करने आया था, कृष्ण को मारने आया। तो कृष्ण की कृपा का क्या परिचय है, देखिए। अर्थात केशी केवल कृष्ण के साथ कुछ संपर्क किया, भले वो नकारात्मक क्यों न हो, केवल कृष्ण के साथ श्लेष मात्र संपर्क के परिणाम से केशिका बदनाम नाम सदा के लिए अमर हो गया। केशव के रूप में कृष्ण जाने गए। अर्थात ये कृष्ण का गुण ही है कि जो उनके साथ संपर्क में आए वो उनका गुण बदल देते हैं। यत्रास्ते भगवान साक्षात, भगवान हर प्रकार के गुणों से संपन्न है। और यत्रास्ते शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि वर्तमान में है, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, भूतकाल में नहीं। यत्रास्ते भगवान अर्थात कृष्ण अभी भी हैं। जो लाभ केशी को प्राप्त हुआ, जो लाभ ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त हुआ वसंत इव लक्षित, वो लाभ आज हमें भी प्राप्त होगा अगर कृष्ण और बलराम के संपर्क में अगर हम आते हैं। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में और गुरु तत्व के रूप में ये भगवत भक्ति का ज्ञान हमारे हृदय में प्रविष्ट कराकर फिर उस भक्ति के परिणाम से परिवर्तन संभव हो पाता है। प्रभुपाद जी चेन्नई में थे तो उस समय प्रभुपाद जी को एक कोई मायावादी मिलने आए और जो वो प्रभुपाद जी को भगवद गीता लेके आकर बहस करने लगे। प्रभुपाद जी की गीता लेके आए और प्रभुपाद जी को बोलने लगे, आपने छठे अध्याय के इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं योग करना चाहिए, आप लिखते हो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, आप लिखते हो जो है हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा अच्छा अच्छा और कुछ? फिर कह रहा हाँ, ये वाले श्लोक में ऐसा लिखा है, कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा है और आपने ये कह दिया कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद ने कहा अच्छा और बताइए। और भक्त लोग सोच रहे हैं कि प्रभुपाद इतने उदार कैसे हो गए। मायावादी जब आते हैं तो कई बार प्रभुपाद बिल्कुल गरज पड़ते थे, बरस पड़ते थे, तो उनको लगा शायद प्रभुपाद जी थोड़ा रनअप ले रहे हैं, मतलब छलांग लगाने के पहले। फिर और पूछे और पूछे, एक घंटा बोलते चले गए, केवल पूछ ही रहे थे एक घंटा, और वो बोले जा रहा है बोले जा रहे, आपने यहां पर देखिए क्या लिखा है, और प्रभुपाद को पढ़ के सुनाया उनके परपोट से। तो प्रभुपाद एक घंटा कंटिन्यूस केवल उसको उकसा रहे थे, और बताओ और बताओ और बताओ। और फिर भक्तों को लगा चलो एक घंटा हो गया, अब तो कुछ होगा एक्शन। फिर प्रभुपाद बोले प्रसाद दो इनको, प्रसाद दिया वो चले गए। भक्त लोग डिसअपॉइंट हो गए, बोले यार आज का मनोरंजन रह गया। फिर प्रभुपाद को पूछे क्या हो गया, ये इतना ऑब्जेक्शन ले रहा था आपके तात्पर्यों को लेकर, इतना बड़ा अपराध कर रहा था, आप चुपचाप सहन कर लिए। प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे परपोट से कंटिन्यूस पढ़ रहा था और कृष्ण का नाम बार बार ले रहा था, एक घंटा हमने उसे कृष्ण कथा कहलवाया, उसका परिणाम धीरे धीरे उसके ऊपर होगा भविष्य में। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज 1970s में जब अपना पद यात्रा आरंभ किए थे, उस समय जो है एक भक्त उनके साथ जुड़ गए, अभी प्रभुपाद के जो शिष्य हैं आत्म तत्व प्रभु, वो अपना बताते हैं कि वो पहले एक दूसरे संप्रदाय में सन्यासी थे। हाँ, उनका नाम था आत्मानंद स्वामी, स्वामी आत्मानंद। लेकिन वो जो पदयात्रा से प्रभावित होकर और भक्तों से प्रभावित होकर भक्तों के संग में आ गए, अब प्रभुपाद जी का अगले दिन प्रभुपाद जी इनिशिएशन देने वाले थे और एक दो दिन पहले लोकनाथ स्वामी महाराज ने उनसे पूछा था कि आपका आप 16 माला कर रहे हो, आप दीक्षा लोगे क्या? वो बोले नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, एक गुरु क्या है मुझे और ठीक से समझना है। तो फिर प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी का गुरु पूजा चल रहा था और सभी लोग गुरु पूजा में गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और प्रभुपाद जी भी बैठे थे और सब लोग प्रभुपाद के चरणों में फूल समर्पित कर रहे थे और जा रहे थे। तो स्वामी आत्मानंद देखे प्रभुपाद को और बोले कि ये क्या हो क्या रहा है। तो लोकनाथ महाराज बोले, गुरु पूजा हो रही है, हम सब प्रभुपाद जी के लिए गुरु पूजा गा रहे हैं। तो बोले, हाँ आप लोग तो सब गा रहे हो, स्वामी आत्मानंद ने कहा, लेकिन वो भी गा रहे हैं। वो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो उनके लिए गा रहे हैं, वो क्यों गा रहे हैं? तो लोकनाथ महाराज बोले, वो अपने गुरु के लिए गा रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी उनको समर्पित कर रहे हैं वो अपने गुरु को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसको बोलते एवं परंपरा प्राप्त। तो इसको सुनकर वो प्रभावित हुए और तुरंत उनके पास प्रोग्राम के बाद आके बोले, मेरा नाम भी इनिशिएशन लिस्ट में डाल दो। तो अरे, अभी तक तो मना कर रहे थे, क्या हुआ? बोले, नहीं अभी मुझे इन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि समझ गए ये स्टैंड अलोन गुरु नहीं है, ये कनेक्टेड है, ये परंपरा में कनेक्टेड है और इसलिए इनका प्रभाव अलग है। तो उन्होंने तुरंत नाम डाल दिया, प्रभुपाद के पास लिस्ट आ गया इनिशिएशन के लिए नाम। तो प्रभुपाद देखने लगे, भक्त सो एन सो, भक्त सो एन सो, भक्त सो एन सो, और नीचे लिखा स्वामी आत्मानंद। प्रभुपाद बोले, स्वामी फॉर इनिशिएशन? तो उनको बोले, नहीं ये पहले दूसरे जगह भटक रहे थे, अब आपके पास आकर समझ गए, फिलॉसफी समझ गए, नाम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सिंसियर हैं। तो प्रभुपाद ने फिर भागवत का श्लोक सुनाया, अपश्यताम आत्मतत्वम। बोले, वो लोग समझते नहीं कि आत्मतत्व क्या है, फिर प्रभुपाद ने उनका नाम लिख दिया गया आत्मतत्व दास। तो इसलिए ये जो वर्णन यहां पर आया है कि सच वृंदावन गुणैर वसंत इव लक्षित, कि वृंदावन वसंत के गुण परिलक्षित कर रहा था, किसमें? ग्रीष्म ऋतु में वसंत के गुण लक्षण हो रहे थे। तो ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण ये धारणा है, इसको समझना। और आगे फिर ये वर्णन आ रहा है, यत्र निर्झर निर्ह्राद निवृत्त स्वन झिल्लिकम शश्वत्तत शिकर रिझिश द्रुम मंडल मंडितम। तो यहां वर्णन आ रहा है ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन कैसा लग रहा था। चार श्लोकों में इसका वर्णन आ रहा है। निर्झर निर्ह्राद, बड़े सुंदर जो निर्झर अर्थात झरने बह रहे थे, निर्ह्राद निवृत्त स्वन झिल्लिकम, और चारों दिशाओं में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीड़े थे, स्वन झिल्लिकम का इंग्लिश में है क्रिकेट। शश्वत तत् शिकर रिझीश, और क्योंकि झरनों के छोटे छोटे जो ड्रॉप्स थे, बूंदें थीं, वो चारों दिशाओं में व्याप्त थीं, और उससे उत्पन्न जो नमी वृक्षों को पूरी तरह सिक्त कर दी थी। द्रुम मंडल मंडितम, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन जल की बूंदों से आमृत वृक्षों को देखकर ऐसा लगता कि ये वसंत नहीं, ये वर्षा ऋतु है। तो उसी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु के भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, और इसलिए यहां वर्णन आ रहा है शश्वत तत् शिकर रिझीश द्रुमन मंडल मंडितम। और वहां किसी प्रकार के क्लेश या दुख के लिए कारण नहीं था, केवल आनंद के ही लक्षण और चिन्ह प्रकट हो रहे थे। सरित सर प्रश्रवण उर्मि वायुना कहलार कंजोत्पल रेणुहारिणा न विद्यते यत्र वनौक साम्दव निदाग बहनी अर्क भवोस्ति षाड्वले। तो अब उस शीतलता के पीछे मूल कारण क्या था? तो सबसे पहले यहां वर्णन आया है पिछले श्लोक में कि शीतल वायु सरित सरह प्रश्रवण ऊर्मि वायुना। जब वायु वहां के विभिन्न सरोवर और यमुना नदी के ऊपर से चलती तो वायु उन जल की बूंदों को उठाकर वहन कर स्वयं शीतल हो जाती। तो अपना एयर कंडीशनिंग का भी यही प्रिंसिपल है। तो वहां पर यही है कि योग माया और बृंद देवी एयर कंडीशनिंग करा रही थी। सरित सरह प्रश्रवण, प्रश्रवण का अर्थ है कॉन्टैक्ट, स्पर्श करना। ऊर्मि अर्थात जल के लहरें, उन लहरों का स्पर्श करते वायुना वायु। सरित सरह प्रस्रवण ऊर्मि वायुना कहलार कंजोत्पल रेणु हारिणा। और वायु न केवल जल की बूंदों को उठाती लेकिन चलते चलते कहलार कंज उत्पल पुष्पों के जो रज है उस पद्म के रज को पोलन को उठाकर लेके चलते थे। तो एक तो शीतल और फिर रंगीन पूरे इफेक्ट के साथ था। कहलार कंजोत्पल रेणु हारिणा न विद्यते यत्र वनौ कसाम दव। इसलिए उस वन के अंदर भीतर रहने वाले दवह उन जीवों को उस गर्मी या किसी प्रकार की पीड़ा की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। निदाग बहनी अर्क भवोति शाद्वले। निदाग का अर्थ है समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु। वहनी अर्क या कई बार जो दावाग्नि बीच बीच में कहीं प्रज्वलित हो जाती। भवो उत्पन्न हुआ अति श अद्वले, उसका भी प्रभाव नहीं हुआ। वहनी अर्क, तो एक तो दावाग्नि और अर्क ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और सूर्य का तापमान, सूर्य के प्रकाश के कारण सामान्य ग्रीष्म ऋतु में चारों दिशाओं में जितनी हरियाली है वो लगभग नष्ट हो जाती है और सारे हरे घास लगभग मुरझा जाते हैं और रंग बदल डालते हैं, सूखे हो जाते हैं। लेकिन इस वायु के कारण जिसमें जल और कमल पुष्प के रज थे उसके प्रभाव से निदाग वहनी अर्क भवो अति शाद्वले। शाद्वले का अर्थ है अतिशय हरियाली। ग्रीष्म ऋतुओं में चारों तरफ अतिशय हरियाली, तो किसी को लगेगा कि ये वर्षा ऋतु है क्या, क्योंकि ऐसी हरियाली वर्षा ऋतु के बाद दिखती है, वो ब्रज के ग्रीष्म ऋतु में दिख रही थी। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये वायु एक चोर की भांति शांति से जल के बूंदों को और रज को चुरा रही थी भगवान के आदेशानुसार। और ये कारण था कि चारों तरफ वहां पर प्रभाव बिल्कुल शीतल था। तो भगवान श्री कृष्ण के योग माया शक्ति के प्रभाव से वृंदावन में पूर्ण परिवर्तन हो गया। इसलिए जब हम अपने हृदय में वृंदावन को धारण करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अपने हृदय के तापमान में परिवर्तन आता है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड वन से जा रहे थे तो बलभद्र भट्टाचार्य को कहते हैं, कृपार समुद्र दीन हीने दया माए, कृष्ण कृपा बिना आर सुख नहीं पाए। तो कहते हैं वास्तव में जीवन में सुख का मूल कारण हमारी परिस्थिति परिवेश नहीं। जब हम हृदय के अंदर हर परिवर्तन को कृष्ण की इच्छा के रूप में देख सकें, पहचान सकें, कृपार समुद्र दीन हीने दया मोय, और उसको कृष्ण की प्रेममयी कृपा से युक्त इच्छा के रूप में देख सकें, कृष्ण कृपा बिना आर सुख नहीं होए। अगर हृदय के अंदर इस प्रकार शीतलता युक्त सुख का अनुभव करना हो तो हर परिस्थिति को, हर आदान प्रदान को, हर प्रकार के संपत्ति और विपत्ति को कृष्ण की कृपा के रूप में देखना सीखो। कृष्ण कृपा बिना आर सुख नहीं होए, तो केवल कृष्ण की कृपा ही एकमात्र सुख का कारण है। अर्थात केवल कृष्ण की कृपा को पहचानना और दर्शन करना। इसलिए एक है भगवान के विग्रहों का दर्शन और दूसरा शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण की इच्छा का दर्शन। तो जो व्यक्ति निरंतर 24 घंटे कृष्ण का दर्शन इस प्रकार कर सके वो वास्तव में सुख अनुभव कर सकता है। सुख की परिभाषा ही यही है, कृष्ण का दर्शन और कुछ नहीं। तो इसलिए जब भक्त लोग मिस मेक्सिको को लेके आए प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो प्रभुपाद जी उनसे मिले, तो वो नॉर्मल सब जगह जिनसे मिलती है वैसे वो उनको बोलने लगे प्रभुपाद को, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया, मैं फिर आऊंगी। प्रभुपाद ने पूछा, क्यों फिर आओगे? वो भ्रमित हो गई, बोले मतलब क्या? प्रभुपाद ने कहा, क्यों आओगे? तो अब जो भक्त उनको कल्टीवेट कर रहा था वो घबरा गया, उनको लगा था ये हमारे अच्छे पीआर कांटेक्ट बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। प्रभुपाद ने फिर पूछा, आप क्यों आओगे? मेरा गीता पढ़े हो क्या? वो बोले नहीं। तो प्रभुपाद ने पूछा, अगर गीता नहीं पढ़े हो, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं, तो फिर क्यों आओगे? तो तब तक भक्त तुरंत उसको लेके बोले, चलो अपन चलते हैं, बोल के लेके चले गए। उनको लगा कि ऐसा डोस मिलने वाला है कि फिर भविष्य में कभी नहीं आएंगे। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ने हम सभी को आध्यात्मिक स्तर पर वास्तविकता देखने का एक उपाय दिया है इन तात्पर्यों के माध्यम से, इस भागवत के और भक्ति के परिवेश के माध्यम से, जिसे हम दर्शन कर सकें। जब हम दर्शन कर पाएंगे कि कृष्ण की उपस्थिति है, जिस हद तक जो व्यक्ति उसका दर्शन कर पाएगा उस हद तक वो किसी भी हृदय के भीतर ग्रीष्म ऋतु या दावाग्नि जैसे परिस्थिति को भी वृंदावन के वसंत ऋतु और शीतलता से अभिभूत चलती हुई वायु का प्रवाह अनुभव कर पाएगा। इसलिए मूल बात यही है कि हमें श्री कृष्ण के उपस्थिति को अनुभव करना है। तो इसलिए हम लोग जो है बलराम जी के बड़े आभारी हैं, क्योंकि वो ये संपन्न आध्यात्मिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। तो अब हम वैसे प्रलंबासुर का वध तो आगे होगा, चैप्टर आरंभ हुआ है, इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे संध्याकालीन 7 बजे के सत्र में। जय श्रील प्रभुपाद जी की, बलराम जी की, ताई गौर प्रेमानंदे।